सुरासुरमनुषदन्दबन्दिदम् घोयिघायिकम् विमलम् प्रणमामि बद्धमानम् तीर्थम् धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार के गेय तत्व प्रज्ञापन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल के एक व्याख्यान में ये बात हुई थी कि यह आत्मा जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, जिसे हम मनुष्य देव नारकी आदि गतियों के रूप में जानते हैं, उनमें एकत्व बुद्धि के कारण वो पर समय है। सारे जो पदार्थ हैं वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक हैं, द्रव्य गुणात्मक हैं और द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं। और द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं और गुण पर्याय किसे कहते हैं, और इनमें से मूल समस्या हमारी क्या है, इसकी चर्चा अपन ने कल एक घंटे के व्याख्यान में बहुत विस्तार से की थी। द्रव्य पर्याय क्या है? दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय है। जैसा कि कल कहा था, एक द्रव्य की पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय नहीं है। और देखो, आप निकालो पेज नंबर 172। कुछ लोगों को ऐसी शंका है, दो बातों की शंका है, कि प्रदेश सत्गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, वो व्यंजन पर्याय ही द्रव्य पर्याय है, इसलिए आप ये कैसे कह रहे हैं कि अनेक द्रव्यों की बात है। और दूसरी शंका ये है कि जो सभी पर्यायों में किसी तरह की एकत्व बुद्धि करता है, उसी का नाम मिथ्यात्व है, आप वजन मनुष्य आदि पर्यायों पर ही क्यों दे रहे हैं? ये दो प्रकार के प्रश्न लोगों के मेरे सामने पिछले 24 घंटों में आए, तो इसलिए मैं आपको वो सब प्रमाण बता रहा हूं जिसके आधार पर मैंने आपसे बात की है। पेज नंबर 172 पर नीचे जो हिंदी है, वो सबसे ऊपर की लाइन देखो, उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है ना। अनेक द्रव्यात्मक एकता माने अनेक द्रव्यों में जो एकता स्थापित करती है, ऐसी पर्याय का नाम, उसका नाम द्रव्य पर्याय है। आगे ना, अनेक द्रव्यों की शर्त इसमें लगी हुई है ना, ये मूल। और इसमें आप ऊपर संस्कृत में भी देखेंगे तो बिल्कुल उसी का ये हिंदी अनुवाद है, तो उसमें ये बात उसमें ऊपर भी लिखी हुई है, आप संस्कृत में भी इसको बहुत अच्छी तरह से देख सके हैं, ख्याल में है ना। अब दूसरी बात, गुण पर्याय क्या है? देखो तो इसी के नीचे से तीसरी लाइन, गुणों द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय है। मतलब छाबरा जी, ये गुण पर्याय की परिभाषा क्या है? कि आयत की अनेकता, आयत माने लंबाई, और आयत की अनेकता माने, आयत माने लंबाई माने पर्याय, पर्याय माने काल, तो पर्यायों की अनेकता माने पर्याय जुदी जुदी हैं। ऊपर लिखा था कि अनेक द्रव्यों की एकता, वहां द्रव्यों की एकता, अनेक द्रव्यों की एकता वो द्रव्य पर्याय में थी, और इसमें आयत की माने पर्यायों की अनेकता की जो प्रतिपत्ति कराए, ऐसी उसका जो कारणभूत है, उसका नाम गुण पर्याय है। माने जिसे हम पर्याय कहते हैं ना, गुणों के प्रणमन को, उसको ही यहां पर गुण पर्याय कहा है। वास्तव में द्रव्य पर्याय वो है ही नहीं, वो गुणों की पर्याय को यहां पर्याय कहते ही नहीं है, समझे ना। जो बदलने वाला जो बात है वो नहीं है, ये तो जो दो द्रव्यों में एकता स्थापित करने वाली है, मनुष्य गति है उसके, मनुष्य जो अपने शरीर है और आत्मा के प्रदेश है, उन दोनों में जो एकता हो गई है, और उसको मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, ऐसा जो मानते हैं ना, नहीं तो इसका नाम मान्यता तो मिथ्यात्व का दोष है, लेकिन इसको शास्त्र में द्रव्य पर्याय कहते हैं। ये कोई गलती नहीं है, वो गलती तो उस द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि है वो है। तो अभी कहेंगे इसमें तो अकेले द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय की बात आई, माने जैसे अपन पर्याय शब्द से कहते हैं, वो अकेली वास्तव में गुण पर्याय है, वो द्रव्य पर्याय पे हमारा लक्ष्य नहीं जाता है। और जब भी पज्जय मूढ़ा ही पर्याय समया की बात आती है, तो हम वो द्रव्य पर्याय गुण पर्याय की बात करने लगते हैं। सम्म दर्शन गुण पर्याय है, सम्म दर्शन में एकत्व बुद्धि वो मिथ्यात्व है, केवल ज्ञान है उसमें एकत्व बुद्धि वो मिथ्यात्व है, वो नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता। वो बात भी है, लेकिन यहां इस बात में वो वजन दे रहे हैं कि वो क्या चीज है। देखो अभी आप निकालिए पेज नंबर 175, सबसे नीचे की जो टीका की पंक्तियां हैं ना, उससे आपको ख्याल में आएगी बात। देखो जो जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का जो कि सकल अविद्याओं का मूल है उसका आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से उसी में बल धारण करते हैं, अर्थात उन असमान जाति द्रव पर्यायों के प्रति बलवान हैं वे जिनकी निरलगल एकांत दृष्टि उछलती है, ऐसे यह मैं मनुष्य ही हूं, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है। इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता के कारण वास्तव में परसमय होते हैं, अर्थात परसमय रूप परिणमित तो होते हैं। ये परसमय की व्याख्या है। अभी समझो क्या क्या मुख्य मुद्दे की बात है जो ध्यान देने लायक है। पहली तो ये जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है, कौन? जो जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय है वो ही सकल अविद्याओं का एकमात्र मूल है। लिखा ना सकल अविद्याओं का एक मूल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें जो वजन ज्यादा दे रहा हूं वो अम्बे चंदाचार्य खुद ये वजन दे रहे हैं कि आज तक हमारा जो मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है, उसका नाम है सकल अविद्या। अविद्या तो वैसे अकेले ज्ञान गुण की पर्याय में लेंगे तो एक ही होगी ना, सकल कहां होगी? तुम्हारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में जो कुछ भी विकृति हुई है, जो कुछ भी अविद्या का रूप प्रणमन हुआ है, अज्ञान रूप प्रणमन हुआ है, मोह राग द्वेष रूप प्रणमन हुआ है, उन सब का मूल क्या है? तो कहते असमान जातीय द्रव्य पर्याय। पहले तो ये लिखा है इसमें। अब क्या कहते हैं कि जो सकल अविद्याओं का अमूल है ऐसी जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय पर्याय का आश्रय करते हुए, जो जीव उसका आश्रय करने की समस्या है, केवल ज्ञान का आश्रय कर कौन रहा है? देखिए मैं आपसे पूछता हूं, इतने लोग यहां बैठे, इनमें कौन सम्य दृष्टि है वो हाथ उठाए? कोई हाथ नहीं उठाता। मतलब सम्य दर्शन में भी किसी की एकत्र बुद्धि नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है। केवल ज्ञान की बात तो बहुत जानो दो। क्यों अजय प्रसाद जी है ना कि मैं सम्य दर्शन हूं, सम्य दर्शन मुझे है, यही मानने को तैयार नहीं है। सम्य दर्शन में हूं यही मानने नहीं है, तो केवल ज्ञान में हूं ये कौन मान रहा है? मैं सिद्ध हूं ये कौन मान रहा है? बोलो क्यों जगनमल जी? लेकिन मैं मनुष्य हूं, मैं जगनमल हूं, मैं जैनी हूं, मैं व्यापारी हूं, समझे ना? मैं ये सब मान रहे हैं, एक एक मान रहा है, क्या ना? तो सकल अविद्याओं का मूल क्या है? कि असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि, उसे अपना जानना मानना और उसी के ध्यान में मगन है। सुबह से शाम तक चिंता लग रही है, 5 बजे से उठे हो और घोड़े जैसे दौड़ करके यूनिवर्सिटी में दौड़ के आए हो, कोमलचंद जी साहब वो काय के लिए दौड़ के आए हो? केवल ज्ञान के लिए, सम्मदर्शन के लिए? कई असमान जाति द्रव्य पर्याय और 10-5 साल चल जाए आसानी से, क्यों? क्यों क्या लिखा? मैं नहीं कह रहा हूं, इस पे से हमारा ध्यान हट गया है और वही चीजें ज्यादा दिखने लगी हैं। गुरुदेव ने तो कहा था, आप वाक्य निकाल के भी मुझे बता सकते हो गुरुदेव ने देखो ऐसा कहा, इस पर वजन दिया, क्योंकि उसकी तरफ जगत का ध्यान ही नहीं था, अकेले इसी बात को समझते थे, इसलिए उनका ध्यान दिलाना जरूरत था। अब आवश्यकता से अधिक ध्यान चला गया क्या, तो उसका ध्यान इस पर ध्यान दिलाना जरूरी हो गया। देखो अपने बेटे की शादी होके आए और दिन भर वो बहू के कमरे में ही घुसा रहे तो माँ बाप को थोड़ा सा समझाने का विकल्प आएगा कि नहीं कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है, जिंदगी में साथ में ही रहना है, लेकिन थोड़े रिश्तेदार वगैरह आते हैं और सब बात जरा अच्छा नहीं लगता है, तो तुम जरा थोड़े सबके साथ बैठा उठा करे, मेहमान आए हैं तुमसे मिलने के लिए, अभी सब बैठक में बैठे हैं और तुम कमरे में घुसे हो, ये अच्छी बात तो नहीं है। समझाते कि नहीं समझाते? और वही लड़का आदि अपनी पत्नी से बोले ही नहीं और बातें ही नहीं करे, क्यों? तो उन्हीं माँ बाप के माथे पे तीन सल पड़ जाते हैं, अभी क्या करे, अभी क्या होगा, हैं? क्यों? तो वे ये समझाने लगते हैं कि प्रेम से रहो, खेलो, खाओ, घूमो फिरो जरा, ऐसा क्या इतने दिन भाई से घटे तो धंधे पानी में लगे, तो धंधा पानी तो जिंदगी भर होता ही रहेगा, थोड़ा घूम फिर के आओ, सिनेमा चले जाओ। अरे ये सारी जिंदगी सिनेमा जाने को रोकते थे, अब सिनेमा भेज रहे हैं, क्यों? एक केशव नाम का कवि हुआ है, उसने एक वैराग्य सतर्कता की कोई किताब लिखी थी, इसमें वैराग्य का वर्णन बहुत था, ऐसी कोई किताब लिखी थी, और उस वैराग्य के सब लोग पढ़ते थे तो सारे घर वाले इतने वैरागी हो गए कि उनका बेटा भी इतना वैरागी हो गया कि वो पत्नी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता था। तो उस लड़के की बहुत चिंतित हुई, लेकिन वो भी कवि थी, बहुत अच्छी विद्वान थी, कवि थी, तो उसने एक छंद लिखा अपने ससुर के नाम चिट्ठी में, केशव पुत्र वधु, इसमें लिखा है केशव की पुत्र वधु ने ये लिखा, क्या लिखा कि उस घर में एक बकरा बकरी था और बकरा जरा जोम में चढ़ रहा था, उसका होगा अपना समय जो होता है ना विषय के सार का समय, तो उसकी उद्दंडता देखकर कर लिखा कि हे ससुर जी, आपने ये वैराग्य के शतक लिख लिख करके घर में ऐसा वातावरण कर दिया है, तो एकाध कोई ऐसी कविताएं भी तो लिखो कि तुम्हारे बेटे की हालत इस बकरे जैसी हो जाए। ऐसा ऐसा ठंड है, ठंड तो मैं भूल गया हूं, क्या जब मैं पढ़ता था ना तब मैंने पढ़ा था, केशव पुत्र वधू ऐसा लिखते, बहुत बढ़िया सवैया है क्या। और फिर उससे वो उनकी समझ में कुछ आया तो उनने श्रृंगार की कविताएं लिखी, तो वो नॉर्मल हो गया क्या। तो ये तो भाई ये कोई विरुद्ध बात नहीं है कि गुरुदेव ने अभी उस पर वजन दिया और मैं इस पर वजन दे रहा हूं, तो ये गुरुदेव का विरोध नहीं है, क्योंकि लोगों का केवल ज्ञान पर्याय भी पर्याय है और उसमें ये कृत बुद्धि भी मिथ्यात्व है, ये बड़े बड़े पंडितों के ख्याल में भी बात नहीं थी, सन्मादर्शन भी एक पर्याय है और उसमें ये कृत बुद्धि भी मिथ्यात्व है, ये बात किसी के ख्याल में नहीं थी, इसलिए उन्होंने ध्यान दिलाया, और ध्यान दिलाने के बाद में भी लोग स्वीकार करते नहीं थे, इसलिए खूब तर्क युक्तियां दे देकर उस बात को सिद्ध किया। अब उनके ही पुण्य प्रताप से ये हालत हो गई है कि सब उसी उसी को मानने लग गए हैं, और जो असली जो सकल अविद्याओं का मूल है, ऐसी जो मनुष्य जाति जो पर्यासमान जाति द्रव पर्याय है, उस द्रव पर्याय में एकत्र बुद्धि को समझते हुए तो स्थूल बातें हैं, बड़े पंडित तो उसको कहने में ही अपने को शर्म महसूस करते हैं क्योंकि ये स्थूल कथन है। तो अमृतंदाचार्य छोटे पंडित थे कि बड़े पंडित थे, और प्रजन साहब छोटा ग्रंथ है कि बड़ा ग्रंथ है, इसमें लिखा है देखो कि सकल अविद्याओं का मूल है, क्या है सकल अविद्याओं का मूल, कि एक असमान जातीय द्रव्य पर्याय, दो द्रव्यों की एकता की प्रतिपत्ति कराने वाली असमान जातीय द्रव्य पर्याय सकल अविद्याओं का मूल है, है ना, है। अब आगे देखिए, हम उसमें आश्रय करते हुए आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से उसी में बल धारण करते हैं। क्या कहते हैं, देखो वे जीव आत्मा का अनुभव करने में नपुंसक हैं, कौन, जो मनुष्य आदि जो पर्याय हैं, जो असमान जाति द्रव पर्याय हैं, उनमें एकत्र बुद्धि धारण करने वाले वो आत्मा का अनुभव करने में वो नपुंसक हैं, ऐसे लोग हैं, क्या कहते हैं, उसी में बल धारण करते हैं, अथवा उन असमान जाति द्रव पर्यायों के प्रति ही बलवान हैं, उनके ही प्रति एकत्व बुद्धि उनके अंदर में घुसी हुई है, वे और जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, कौन सी एकांत दृष्टि, कि अकेली वो असमान जाति द्रव पर्याय जो मनुष्य अधिक हैं उनमें ही एकत्व को मिथ्यात्व मानते हैं, अथवा जो केवल ज्ञानादि पर्यायों में भी एकांत को मिथ्यात्व मानते हैं, और इनकी तरफ जिनका ध्यान नहीं है, यह मैं मनुष्य ही हूं, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, इस प्रकार अहंकार और ममकार करते हैं देह में, ऐसी एकांत दृष्टि जिनकी उछलती है निरंतर, ये एकांत दृष्टि निरंतर उछलना क्या है, ये तो श्रद्धा के लेवल में अंदर में पड़ी रहती होगी। क्यों? जैसे एक सम्मत स्त्री यहां बैठा हो तो उसके सिर पर कोई सिंह थोड़ी उगते हैं। क्या वो त्रिकाली ध्रुव जो भगवान आत्मा है उसमें उसकी एकत्व बुद्धि होगी और सम्मत स्त्री हो गया। अब सम्मत स्त्री होते ही उसके माथे पर सिंह उगे आएंगे और लगेगा भैया कोई बड़ा महान आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं कल लगता था ऐसे याद लगूंगा, हो जाए तुम्हें हो जाए तो तुम कोई कल से प्रिंसिपल थोड़ी हो जाओगे, अगले हो गए स्टूडेंट है और ब्रिंच पर खड़े कर देंगे तुम्हारे अध्यापक, कल भी तुम्हें भी कर देंगे कि नहीं कर देंगे। कहते तो सम्मत दृष्टि हो गए और सम्मत दृष्टि का अपमान है और एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान है कि चुपचाप खड़े हो जाओ, होगा कि नहीं होगा। तो वो कहते हैं तुम्हें दृष्टि उछलती है का क्या मतलब, माने श्रद्धा में है, ज्ञान में है, वाणी में आती है, क्रिया में देखने में आती है, उसका जो एकत्व है उसके प्रति वो उसका श्रद्धा ज्ञान चाहे तो तीनों में प्रकट होता दिखाई देता है। कि जब आत्मा शब्द यहां मुंह से निकलता है तो वहां रोम 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 रोमांच हो जाता है। आत्मा शब्द सुनते ही क्या करें, इसका नाम है कि वो ऐसा आदमी आत्मा सुनकर के उसकी दृष्टि उछलती है। और इसके मनुष्य आप बहुत महान बड़े सेठ जी पधारो 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 तो उसके अंदर से वो उछलता है। इसका नाम है कि उसकी निरंतर उसमें एकत्व बुद्धि उछल रही हो, उस पर्याय की प्रशंसा करो तो अंदर से गदगद हो जाता है। जैसे मान लो जीवन ने किसी में एक ईमानदारी का काम किया, यहां एक पर्स पड़ा रहा था उसमें 1000 रुपए के नोट थे और कोई नहीं था, अकेला ही था, वो ले जाता तो ले जाता लेकिन उसने कहा भाई किसी का पर्स है इसमें 1000 रुपए पड़े हैं ले जाओ। देखो तो कैसा जमाना है, इस जमाने में भी ऐसे लोग अभी विद्यमान हैं। क्यों? तो ये जो प्रशंसा की सामने वाले ने तो ये काय की प्रशंसा है? बोलो मोहनलाल जी, वो उस समय की तेरी ईमानदारी नाम की पर्याय की द्रव्य की नहीं है, काय की प्रशंसा है? तेरे उस समय का जो विकल्प की कि तेरे को उसको दे देने का विकल्प आया, वापस रखने का विकल्प नहीं आया, ये काय की प्रशंसा है? उसकी है। उसमें तू मैं चौड़ा और बजा सकड़ा हो जाएगा, देखो देखो मेरी कितनी प्रशंसा हो रही, मेरी कितनी प्रशंसा हो रही। इसका नाम है पर्याय दृष्टि का उछलना। क्यों करें? मतलब वो जो पर्याय वर्तमान पर्याय में तू जिसमें है उस पर्याय की प्रशंसा में तेरे रोम रोम गदगद हो जाए तो ये है पर्याय दृष्टि का उछलना। तो देखो इस प्रकार अहंकार के द्वारा ठगाए जाते हुए, माने वो ठगे जा रहे हैं क्योंकि जिसकी प्रशंसा हो रही वो तो वो है ही नहीं, अब वो समझ रहा मेरी प्रशंसा है। क्यों? बेटे का नाम महावीर रखा किसी ने, क्योंकि महावीर क्यों रखा कि कम से कम मरते वक्त भगवान का नाम तो याद आए। क्यों? इसलिए बेटे का नाम महावीर रखा कि महावीर 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 बोलूंगा तो लोग सब सारे सुनेंगे मोहल्ले वाले के भगवान को याद करते करते मरा है। मरूंगा बेटे को याद करते करते, लेकिन महावीर शब्द से उसकी दृष्टि में कौन सा त्रिगुण पर्याय है और जगत क्या समझे? क्यों? तो ऐसे ही कहते हैं कि वो जिसके बारे में प्रशंसा हो रही है वो तो तू है नहीं। अमरचंद दीवान ने कहा था ना, देने वाला और है, देत रहे दिन रैन, और लोग भरम मेरा करें याते नीचे। देने वाला तो उनके पुण्य का उदय है, जिसको दान में भी पैसा मिलता है उसके पुण्य के उदय के बिना नहीं मिलता, समझिए ना। तो देने वाला तो उसके पुण्य का उदय है और लोग मेरे से कहते हैं आपने दिया इसलिए मुझे शर्म आती है कि मेरा झूठा नाम बदनाम हो रहा है। तो पर्याय की प्रशंसा में जो इसका उत्साह बढ़ता है वो उत्साह इसका नाम है कि वो ठगाया जा रहा है। कौन ठगा? किसी को ठग नहीं रहा है वो, वो खुद ठगाया जा रहा है। देखो कुछ क्या करते हैं, अविचलित चेतना विलास मात्र जो आत्म व्यवहार है। आत्मा का व्यवहार तो क्या है कि अविचल जो चेतना है उसमें ही रमना, माने ज्ञानानंद स्वामी जो भगवान आत्मा है अविचल चेतना, ये जो है ना ये तो चलायमान चेतना है, जो पर्याय रूप चेतना है ना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, ये तो पर्याय रूप चेतना है। जो अंदर में अविचल चेतना है ना ज्ञान, उसमें उसका विलास, उसमें और उन गतियों के शरीर इशारा क्रिया कांड को नहीं करता है तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहने वाले तो गली गली में मिलेंगे। ये प्रचंड सार ये कह रहा है कि ये सब मनुष्य व्यवहार है और जिसने छाती से लगाया है वो असमान जाति द्रव पर्याय में एकत्र बुद्धि वाला है। क्या इसे क्या तो ज्ञानी जनों के ऐसा व्यवहार नहीं होता है? ऐसा सच्चा व्यवहार ज्ञानी जनों के ही होता है। वो इस क्रियाकांड को छाती से नहीं लगाते हैं, क्रियाकांड तो उनके भी होता है, भगवान के प्रति भक्ति का भाव भी होता है, ध्यान देने का भाव भी होता है, जिन वाणी को घर घर पहुंचाने का भाव भी होता है, ख्याल में सब भाव ज्ञानी के होते हैं, लेकिन इसमें उनकी रंज मात्र भी एकत्व बुद्धि नहीं है। ऐसे करने से मैं धर्मात्मा हो गया ये रंज मात्र नहीं मानते हैं, और उस वक्त जो उनकी आत्मा में एकत्व बुद्धि है, आत्म चेतना विलास मात्र में जो एकत्व बुद्धि है, उसमें जो उत्साह है उनका अंदर से, वो उनका धर्म की क्रिया है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। होता तो सब में लोग साहब जो तो तीव्रता उनमें होती, मंदता उनमें होती, तीव्रता मंदता तो उदय के अनुसार समय समय पर, जैसी समय दृष्टि को भी तीव्र हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को मंद हो सकता है, कभी कभी मिथ्या दृष्टि को भी तीव्र हो सकता है और समय दृष्टि को भी मंद हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका नियम अंदर के आत्मा में एकत्व बुद्धि रूप सम्म दर्शन से कोई नहीं है, वो तो उदय के अनुसार जैसा होता है वैसा हो जाता है, ख्याल में है ना, ऐसी बात है। इस तरह जो मैं आपसे कहना चाहता था, देखो भावार्थ में पढ़ो, मैं मनुष्य हूँ, शरीर आदि की समस्त क्रियाओं को मैं करता हूँ, स्त्री पुत्र धनादि ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूँ इत्यादि मानना से मनुष्य व्यवहार है। मात्र अविचलित चेतना वह मैं ही हूँ ऐसा मानना परिणमित होना वह आत्मव्यवहार है। तो ये जो यहाँ पर वजन दिया है वो सबसे ज्यादा असमान जाति द्रव्य पर्याय में वाले को ही पज्जय मूढ़ा ही पर समय आए कहा। अब मैं ये कहता हूँ कि जब यहाँ इस पर वजन दिया और वैसा ही अस्तित्व और अनंत पदार्थों में है, अनंत के जितने पदार्थ लोक में हैं उनका भी वैसा ही अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व अस्तित्व समान हुआ। इस समानता के आधार पर, महासत्ता के आधार पर, उसमें एकता की कल्पना करना, उसका नाम है सादृश्य अस्तित्व। उस सादृश्य शब्द ही पड़ा हुआ है कि समानता के आधार पर जो एकता की बात है, हम तुम एक से हैं इसलिए एक हैं। अब यहां पर ये कह रहे हैं इसका स्वरूप बता करके कि उस सादृश्य अस्तित्व के बल पर कि हम और तुम एक ही हैं, तो स्त्री पुत्रादि को अपना मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो सादृश्य शास्त्र की बात है, तो कहते स्वरूप अस्तित्व को छोड़े बिना, स्वरूप अस्तित्व का ज्ञान करके उसमें एकत्व बुद्धि को छोड़े बिना, उसके बाद में उसी के समान जो दूसरे चीजें हैं उनमें एकत्व समझना, एकत्व समझना माने ज्ञान करना। जैसे कि मनुष्य की दृष्टि से तो मैं, हम सब मनुष्य हैं, फिर हम सब जीव हैं, फिर हम सब द्रव्य हैं, तो ऐसे कई तरीके से हो सकता है वो। तो जो सबसे बड़ा है, जिसके बाद में कोई बड़ा नहीं हो, उसको बोलते हैं महासत्ता। जैसे ये सत्य कि मैं हूं और आप हैं तो सब हैं, सब हैं, और अब बीच बीच के जो ये बनते हैं कि सब मनुष्य हैं, सब त्रिंश हैं, अथवा जो सब जीव हैं, ये सब अवान्तर सत्ता कहलाते हैं। और ये अवान्तर सत्ता महासत्ता से लेकर स्वरूपास्तित्व तक अनंत प्रकार की हो सकती है। कैसे हो सकती है कि जब हमारे द्रव्यगुण पर्याय के बाहर सीमा में हम निकलेंगे और एक भी दूसरे द्रव्य के साथ में हमने किसी आधार पर एकता स्थापित की तो वो सब अवान्तर सत्ता कहलाएगी। क्या देखिए, हम अपने पिताजी के दो लड़के हैं, हम दो भाई हैं, तो हम बोले कि हम दोनों एक हैं, तो हम दो में एक किया ना, हमने दो में एकत्व किया, तो यहां से लेकर वो सारा जगत को अपने में समेट ले, वहां तक जाकर के वो एक ही हो जाएगा, वो अवान्तर सत्ता कहलाती है, अवान्तर सत्ता कहलाती है, महासत्ता और अवान। अब स्वरूपास्तित्व, स्वरूपास्तित्व वो तो होगा सादृश्य अस्तित्व के भेद। अब जो स्वरूपास्तित्व है वो अपने द्रव्यगुण पर्याय के भीतर भीतर ही होता है। अब देखिए, अपने द्रव्यगुण पर्याय के भीतर भीतर जो स्वरूपास्तित्व होता है, तो ये अपने देखा है सत्ता स्वरूप नाम की एक किताब है, पूरा सत्ता का स्वरूप लिखा ना, सत्ता माने अस्तित्व गुण, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, सत्ता माने गुण पर्याय व द्रव्यम, गुणों पर्याय वाला द्रव्य है इसका नाम सत्ता है, उत्पाद वे ध्रुव से सहित है इसका नाम सत्ता है। इस सत्ता से कोई अलग चीज नहीं है, चाहे सत्ता कहो चाहे अस्तित्व कहो, वस्तु का स्वरूप अस्तित्व कहो चाहे सत्ता कहो। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो सत्ता है वो द्रव्य से पृथक है कि अपृथक है, एक समस्या खड़ी हुई। अब एक दूसरा विषय थोड़ा सा गंभीर है उसे, क्योंकि सत्ता तो एक गुण का नाम है, अस्तित्व गुण का नाम सत्ता है, और द्रव्य तो अनंत गुणों के पिंड का नाम है। तो वो सत्ता और द्रव्य भिन्न भिन्न है कि इकट्ठे हैं? तो आचार्य कहते कथनचित भिन्न भिन्न है और कथनचित इकट्ठे हैं। और इसी संदर्भ में वो एक बात और कहते हैं कि भिन्न भिन्न का अर्थ क्या, भिन्नता दो प्रकार की होती है, एक पृथकता और एक अन्यता। पृथकता माने दो पदार्थ जुदे जुदे हैं वो पृथकता, और अन्यता माने दो पदार्थ यह तो एक ही पदार्थ, कि जिनकी सत्ता एक हो और स्वभाव भिन्न हो, भाव भिन्न हो, सत्ता एक हो उनमें होती है अन्यता, और जिनकी सत्ता अलग अलग हो उसमें होती है पृथकता। भिन्नता तो दोनों को ही बोलते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों में है पृथकता है नहीं ना, और हिंदुस्तान और राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों में है अन्यता, ख्याल में आ गया ना। तो द्रव्य और गुण इनके बीच में अन्यता होती है, पृथकता नहीं होती है। द्रव्य और पर्याय उसके बीच में अन्यता होती है, पृथकता नहीं होती है। दो द्रव्यों के बीच में अन्यता होती है, यानी दो द्रव्यों के बीच में पृथकता होती है, अन्यता नहीं होती है। लेकिन दो एक द्रव्य की दो पर्यायों के बीच में अन्यता होती है, पृथकता नहीं होती है। एक द्रव्य के दो गुणों के बीच में अन्यता होती है, पृथकता नहीं होती है। ठीक है, अब एक प्रश्न पूछता हूं कि मेरा ज्ञान गुण और आपका दर्शन गुण इनमें पृथकता है कि अन्यता है? अन्यता, पृथकता है, क्योंकि आपका दर्शन गुण लिया और मेरा ज्ञान लिया ना, कि मेरा ही ज्ञान और मेरा ही दर्शन लेते तो अन्यता होती। सवाल दो द्रव्यों, वो दो द्रव्यों के बीच का मामला हो गया, तो ज्ञान ज्ञान में भी पृथकता होगी, मेरा ज्ञान और आपका ज्ञान इन दोनों में पृथकता है। तो एक द्रव्य गुण पर्याय के बीच में जो सिर्फ भाव से भिन्नता होती है, और तीन प्रकार की अभिन्नता होती है, द्रव्य से भी अभिन्नता, उन दोनों का द्रव्य भी एक है, दोनों के प्रदेश भी एक, क्षेत्र भी एक है, सुने ना, दोनों का काल भी एक है, अकेला भाव से भिन्न हो तो उसको बोलते हैं अन्यता। ज्ञान का जानने रूप भाव है और दर्शन का देखने रूप भाव है, ये अन्यता, ये नियम है इसका। अपन जैसा कोई प्रयोग करते नहीं, चाहे जहां अन्य लिखते हैं चाहे जहां भिन्न लिख देते हैं। वैसे मैंने थोड़ा प्रयोग करने की कोशिश की थी लेकिन वो बाद में सफल नहीं हुई, तो मैं कह सारे आगम में तो अपन भी चलने दो, ऐसा जो कहां की थी बताऊं मैं। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, समझ जाए ना। यहां भिन्न क्यों नहीं लगा, वहां अन्य क्यों नहीं? तो देह से तो भिन्न है, क्योंकि देह और आत्मा तो दो द्रव्य हैं, और राग और आत्मा दो द्रव्य नहीं है, समझ गया ना। इसलिए राग द्रव्य में और आत्मा में से अन्य है, अब गुण भेद से भी अन्य है लिखना चाहिए था, लेकिन वहां भी लिखे गुण भेद से भी भिन्न है, क्योंकि कर देता अन्य। लेकिन सब जगह तो क्या भिन्नता तो दोनों अर्थ में आती है ना, वो पृथक शब्द थोड़ी प्रयोग किया। लेकिन गुण भेद से भिन्न में अलंकार है, उच्चारण में सुविधा है, भेद और भिन्न है ना, भाभा का प्रयोग है ना, इसलिए उच्चारण में सुविधा रहती है, इसलिए गुण भेद से भिन्न ही रखा। फिर गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, लेकिन क्या किया क्यों किया वो सब सोच के रखा है, है? क्या संभव है, नहीं हुआ है, इसे क्या किया तो इसलिए भिन्नता और अन्यता तो इसमें दिया है। इसमें जो मैंने कल आपको बताए थे वो आपको देखने के लिए कहाँ निकालो पेज नंबर है। बीच में भी मुझे बहुत बताना है लेकिन मैं आपको 213 पेज पे अभी ले चलता हूं थोड़ा ये बात बताने के लिए। गाथा है 106। पविभत्त पदे सत्तम उदत्त मिधि शासनम ही वीरस्य तो क्या कहते हैं वो विभक्त प्रदेशत्व वो पृथकत्व का लक्षण है। देखो पविभक्त देशत्वम विभक्त प्रदेशत्व उद्धत्व मिधि वो पृथकत्व है। जिनके प्रदेश जुदे होते हैं उन्हें पृथक बोलते हैं है ना। ऐसा वीरस शासनम भनियम ऐसे भगवान महावीर के शासन में ये बात कही है। और अन्यत्व क्या है अन्यत्वम अतद्भावो अतद्भाव को अन्यत्व कहते हैं। अब ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं माने अन्य तो उनमें भी एकता एक नहीं हो सकते और जो पृथक हो वे भी एक नहीं हो सकते लेकिन दोनों में अलग अलग टाइप की है और मूल गाथा में वो बात है। देखो अभी लगा ना विभक्त प्रदेशत्व तो है पृथकत्व तो है ऐसा वीर का उपदेश है अतद्भाव वह अन्यत्व है जो उस रूप न हो वह एक कैसे हो सकता है। देखो कथनचित सत्ता द्रव्य रूप नहीं है और द्रव्य सत्ता रूप नहीं है इसलिए वो एक नहीं है। तो द्रव्य और सत्ता में क्या है पृथकत्व नहीं है अन्यत्व है और अन्यत्व भी कथनचित है। कथनचित वे दोनों एक हैं और कथनचित वे दोनों अलग हैं। देखो ये टीका विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है वह तो सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है। वो कह रहे हैं कि द्रव्य और सत्ता में ऐसी भिन्नता पृथकता तो संभव ही नहीं है क्योंकि सत्ता के और द्रव्य के प्रदेश एक हैं। इसमें अकेला प्रदेश एक लिखा मैं कह रहा हूं द्रव्य भी दोनों का एक है काल भी दोनों का एक है समझ में आया ना। लेकिन यहां पर एक से काम चल गया तो उन्होंने उसकी बात को ले लिया कि विभक्त प्रदेशत्व जो है उनके प्रदेश एक है क्योंकि सत्ता अभी आगे पीछे जो है ना बहुत विस्तार से इस बात को कहेंगे कि उत्पाद व्यय और द्रव्य और ये युक्तम सत उत्पाद व द्रव्य से जो युक्त होता है वो सत है और सत्ता द्रव्य का लक्षण है। तो सत्ता और द्रव्य में अन्यता है भिन्नता नहीं है तो उत्पाद में और द्रव्य में अन्यता हुई कि भिन्नता हुई फिर वो लगाएंगे व्यय और द्रव्य में क्या हुई इन तीनों में लगाएंगे तो उत्पाद भी सत है और व्यय भी सत है और द्रव्य भी सत है तीनों सत हैं। तो तीनों जो सत हैं वो तीनों में तीन सत्ता है कि एक सत्ता है। सत्ता नाम का गुण एक है कि तीन है। अस्तित्व नाम का जो गुण है तीनों में वो एक है कि तीन गुण है। वो तो तीनों में एक ही अस्तित्व नाम का गुण है इसलिए उत्पाद कहते तो हैं कि उत्पाद भी सत है व्यय भी सत है और द्रव्य भी सत है लेकिन वास्तव में तीन सत नहीं है एक ही सत है। तो हम कहेंगे सत का अंश है तो सत के अंश को भी सत कहते हैं। सत के अंश को भी सत कहते हैं ना इसलिए उत्पाद भी सत है व्यय भी सत है और द्रव्य भी सत है। कहते वो सत्ता तीनों में व्याप्त है उत्पाद में व्यय में और द्रव्य में तीनों में वो सत्ता व्याप्त है और ऐसी सत्ता वो द्रव्य में व्याप्त है। गुण किसे कहते हैं जो द्रव्य के सब प्रदेशों में रहे तो सब प्रदेशों में व्याप्त होगी सत्ता गुण है ना और सब पर्यायों में रहे तो सब पर्यायों में व्याप्त होगी कि नहीं होगी। अच्छा तो अब देखिए वो सत्ता गुण सत्ता जो है तो ज्ञान की सत्ता है कि नहीं दर्शन की सत्ता है अनंत गुणों की सत्ता अलग अलग है कि नहीं। बोलते तो है ना इसमें ज्ञान का अस्तित्व है दर्शन का है वीर का सबका अस्तित्व है सबका अस्तित्व है लेकिन अनंत गुण है तो अनंत अस्तित्व है कि एक ऐसी विचित्र बात है कि अनंत का अस्तित्व होकर के भी वो अस्तित्व सब मिला के एक ही है। तो फिर वो गुरुदेव समझाते हैं ना अपनी 47 शक्तियों में कि वो सत्ता गुण का रूप सब में है इसकी वजह से सब गुण है। सत्ता तो स्वयं सत्ता है और ज्ञान सत्ता है ज्ञान का अस्तित्व है चारित्र का अस्तित्व है कि अस्तित्व ना गुण का रूप होने से ज्ञान का अस्तित्व है ऐसा बोलते हैं उसे। तो सत्ता गुण सब गुणों में व्याप्त है क्या नहीं। और एक एक गुण की जो एक एक पर्याय होगी उसमें सत्ता व्याप्त है कि नहीं, हर समय जो उत्पाद होगा उसमें सत्ता व्याप्त है कि नहीं, जो व्यय होगा उसमें सत्ता व्याप्त है कि नहीं, जो जो द्रव्य रहेगा उसमें सत्ता व्याप्त है कि नहीं। तो कहते वो सत्ता प्रत्येक गुण में, प्रत्येक द्रव्य में और प्रत्येक पर्याय में व्याप्त है। अब प्रत्येक द्रव्य में अपने द्रव्य में स्वरूप अस्तित्व की बात चल रही ना, अब फिर कहेंगे वो सत्ता प्रत्येक द्रव्य में व्याप्त है तो वो अलग नहीं, वो अलग सत्ता है। जो तुम में है वो हम में से अलग सत्ता है और हम में अलग सत्ता है। तो वो तो जो सत्ता नाम की जाति से बात हुई और इस सत्ता नाम की व्यक्ति से बात हुई। जो हम कहते सब द्रव्यों में सत्ता नाम का गुण है तो सब द्रव्यों में एक सत्ता नाम का गुण नहीं है, लेकिन आत्मा के सब गुणों में एक सत्ता नाम का गुण है, आत्मा की सब पर्यायों में एक सत्ता नाम का गुण है। ख्याल में आए ना, ये है सादृश अस्तित्व और स्वरूपास्तित्व के अंतर को समझना। स्वरूपास्तित्व नाम की जो सत्ता है वो एक ही है, हमारे सारे द्रव्यगुण में व्याप्त होती है, द्रव्यगुण पर्याय में व्याप्त होती है। लेकिन सादृश अस्तित्व नाम की जो महासत्ता है वो सब द्रव्यों में व्याप्त होती है और वो एक नहीं है, वो तो अनेक है, अनेक जितनी है और उनको तो जाति की अपेक्षा एक कहते हैं, जैन एक, हम सब जैन एक है ऐसी अपेक्षा कहते हैं। तो ऐसा ये सत्यता है। अब जो बाद में बताना है आपको, देखो लिख पढ़ना, विभक्त प्रदेश पृथ्वत्व का लक्षण है वह सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है, क्योंकि गुण और गुणी में विभक्त प्रदेशत्व का अभाव होता है। शुक्लत्व और वस्त्र की भांति, सफेद वस्त्र तो सफेदी का भी अस्तित्व है और वस्त्र का भी अस्तित्व है, लेकिन दोनों के अस्तित्व जुदे जुदे हैं। यदि दोनों के अस्तित्व जुदे जुदे होते तो सफेदी को तुम ले जाओ और वस्त्र यहीं छोड़ जाओ, ऐसा हो जाता। लेकिन देखो शरीर के परमाणु और आत्मा, इनका अस्तित्व जुदा जुदा है तो शरीर के परमाणु यहीं पड़े रह जाते हैं और आत्मा चला जाता है। तो शुक्लत्व मन सफेदी और वस्त्र की भांति वह इस प्रकार है, जैसे शुक्लत्व के गुण प्रदेश हैं वे ही वस्त्र के गुणी के हैं। देखो जो गुण और प्रदेश है ना, जो शुक्लत्व के माने गुण के प्रदेश हैं वे ही वस्त्र माने गुणी के हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। इसी प्रकार जो सत्ता के गुण के प्रदेश हैं वे ही द्रव्य के गुणों के प्रदेश, गुणी के प्रदेश हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा होने हो गया, ऐसा होने पर भी सत्ता और द्रव्य में अन्यत्व है। अब एक ही होगा तो अन्यत्व क्यों कह रहे, सत्ता दोनों की एक है तो, क्योंकि अन्यत्व के लक्षण का सद्भाव है। अन्यत्व का लक्षण क्या था, तद्भाव, अन्य तद अभाव था तो तद अभाव है, भाव का अभाव है, अतद्भाव अन्यत्व का लक्षण है। वह तो सत्ता और द्रव्य के ही के है ही, क्योंकि गुण और गुणी के तद्भाव का अभाव होता है। शुक्लत्व और वस्त्र की भांति वह इस प्रकार है कि जैसे एक इंद्रिय चक्षु इंद्रिय के विषय में आने वाला और एक अन्य इंद्रियों के समूह को गोचर न होने वाला शुक्लत्व गुण है, वह समस्त इंद्रिय समूह के गोचर होने वाला ऐसा वस्त्र नहीं है। देखो क्या कह रहे, सफेद और वस्त्र दोनों में फर्क है, कहना फर्क है, क्या फर्क है कि सफेदी तो सिर्फ आंख से पकड़ में आती है और वस्त्र छू के भी देखा जा सकता है।